भारत से बहुत से फिल्म स्टार मेलबर्न शहर में आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, और इस बार जो हमारे साथ मौजूद हैं वो मराठी फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और मेलबर्न शहर में एक मराठी फिल्मों का महोत्सव होने वाला है, उसकी शुरुआत होने जा रही है। उसी के इनॉग्रेशन के लिए, उसी में पार्टिसिपेट करने के लिए सुबोध भावे हमारे साथ मौजूद हैं। सुबोध भावे एक्टर तो हैं ही, साथ में फिल्में बनाते भी हैं, डायरेक्ट भी करते हैं, एक्टर डायरेक्टर, और ऐसा भी बताया गया है काफ़ी फिल्मों में उनका लेखनी यानी लिखने का भी काम भी रहा है। सुबोध भावे साहब, SBS रेडियो हिंदी पर आपका स्वागत है।
थैंक यू जय।
सर, ये करिश्मा क्यों होने लगा है? ऐसा देखा जाता था पुराने टाइम में कि लोग लिखते थे खुद, डायरेक्ट भी करते थे और एक्ट भी करते थे, मगर बीच में 80s में 90s में ये दौर खत्म हो गया था। अगर हम क्षेत्रीय सिनेमा की बात करें, रीजनल सिनेमा की, तो उसमें ये अभी भी होता है। कैसे सब कुछ एक साथ आप लोग कर पाते हैं?
मैं उसको मजाकी तौर से लाचारी कहता हूँ। जब
सर हम लोग इसे टैलेंट कहते हैं, कैसे आप लोग लिख भी पाते हैं, डायरेक्ट भी कर पाते हैं, एक्ट भी कर पाते हैं?
जी, बहुत सारी क्या होता है कि एक कलाकार जब भूखा होता है और उसके दिमाग में बहुत सारी हलचलें मची रहती है, उसको ये करना होता है, उसको वो करना होता है, उसको अलग कुछ करना होता है, लेकिन एक एक्टर ऐसी चीज़ है कि जो सबसे बेकार होता है, मतलब वो कुछ क्रिएट नहीं करता है, पता है। जैसे कवि, जैसे लिरिसिस्ट कुछ शब्दों का निर्माण करता है, या एक पेंटर होता है जो कुछ किसी चीज़ का निर्माण करता है, एक खूबसूरत सी पेंटिंग बनाता है, एक म्यूज़िक कंपोज़र होता है जो एक अच्छी सी धुन बनाता है, जो फिल्म का राइटर होता है वो कुछ अच्छी कहानी लिखता है, जो डायरेक्टर होता है ही इज़ इन रियल वर्ल्ड कैप्टन ऑफ द शिप, तो वो पूरा डिज़ाइन करके एक अच्छी फिल्म को बनाता है, लेकिन इस सब में एक्टर का कुछ काम नहीं होता है। सबसे बेकार और सबसे कुछ ना करने वाली अगर बात है फिल्म में तो वो एक्टर होता है।
बहुत सारे एक्टर नाराज होंगे इस बात से,
होंगे, लेकिन वो सच बात मैं बोल रहा हूँ। तो एक्टर वही करता है जो लेखक ने या राइटर ने लिखा हो, और वो जैसे डायरेक्टर उसको चाहता है परफॉर्म करने या अपने एक सुर को दूसरे सुर के मिलाने के साथ किसी और मंजिल तक ले जाने के लिए, बस एक्टर वही करता है, और वो अच्छा करता है इसलिए उसको अच्छा एक्टर बोलते हैं। वो प्रोफेशनली करता है, वो ऐसा लगता है लोगों को कि सच मायने में हम लोग किसी किरदार को देख रहे हैं, इसलिए उसको अच्छा एक्टर बोला जाता है, लेकिन वो कुछ क्रिएट नहीं करता है। तो क्रिएट तो बाकी लोगों ने किया हुआ है, वो तो बस पहुंचाता है। जैसे हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़े एक्टर थे, डॉक्टर श्रीराम लागू, तो उन्होंने एक बुक लिखा अपने पूरे सफ़र के ऊपर, तो उसका नाम उन्होंने रखा था लमांड। लमांड माने हमाल, माने कुली, जो सामान उठाता है और वहाँ से जाके कहीं और तक पहुँचाता है। तो हम लोग जो एक्टर है वो बस राइटर और डायरेक्टर का सामान उठाने वाली चीज़ है जो हम ऑडियंस तक लेके जाते हैं।
क्या बात है। और जब आप डायरेक्टर की हैट पहन लेते हैं तो ऐसा लगता है कि क्रिएटिव सेंस में कुछ हासिल किया। आपकी जो फिल्म थी काटियार कांजर घुसी, ये 2015 में सबसे ज़्यादा शायद मराठी सिनेमा में पैसे कमाने वाली पिक्चर थी। आजकल हम जितने ज़्यादा पैसे कमाते हैं उतना ही सफल मानते हैं फिल्मों के।
देखिए, वो जो फिल्म थी वो 2015 की और आज तक की भी बहुत सारी जो मराठी की ब्लॉकबस्टर फिल्म है उसमें से एक फिल्म है। तो म्यूज़िकल फिल्म है कटियार का आज़ाद घुसली, उसका हिंदी का उसका अर्थ है लागी कलेजवा कटार, मतलब हृदय में जब कोई कटार भोंकता
है। भोजपुरी में भी बनाने वाले हैं आप?
हाँ, अगर भोजपुरी लोग पसंद करेंगे तो भोजपुरी में बनाएंगे। और ये जो मराठी प्ले था, एक बहुत पुराना मराठी प्ले था, उसका नाम कटियार का आज़ाद घोसले था, वो भी म्यूज़िकल प्ले था। और जब मैंने वो प्ले डायरेक्ट किया और उसमें काम करना शुरू किया तो मुझे लगा कि यार ये म्यूज़िक अपना जो है, और ये जो है वो कोई मराठी म्यूज़िक नहीं है, ये है, ये इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है जिसके ऊपर नाट्य संगीत करके एक ब्रांच मराठी संगीत की आधारित है। और वो तो मराठी संगीत नाटक की परंपरा तो 150 साल पुरानी है, 1880 में पहला नाटक हुआ था, तब से वो परंपरा चली आ रही है। तो बेसिकली ये मराठी नाट्य संगीत जुड़ा हुआ है भारतीय शास्त्रीय संगीत से, और भारतीय शास्त्रीय संगीत तो अपने रूह में है, अपने नस नस में है, अपनी परंपरा में है, अपनी संस्कृति में है। तो वो नाटक करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार मेरे जैसा एक अनपढ़ गंवार आदमी कि जिसको म्यूज़िक में कोई रुचि नहीं थी कुछ सालों तक पहले, और जिसने म्यूज़िक सीखा नहीं है, जो क्लासिकल म्यूज़िक अगर लगता है तो उसको पहले बंद करता है, तो ऐसा एक अनपढ़ गंवार आदमी अगर क्लासिकल म्यूज़िक उसको अच्छा लगने लगे, वो अगर क्लासिकल म्यूज़िक से प्यार करने लगे, तो मेरे जैसे बहुत सारे अनपढ़ गंवार लोग आजू बाजू में हैं जिनको वो क्लासिकल म्यूज़िक अपना नहीं लगता, जिनको वेस्टर्न म्यूज़िक अपना लगता है, जो शायद अपना सुर खो चुके हैं। तो मैं समझता था कि यार वो भी उस म्यूज़िक को अपनाएंगे अगर मैं उनको सही तरीके से वो म्यूज़िक पहुँचाऊँगा। तो इसीलिए मैंने कटियार का असद घुसली को डायरेक्ट करने का निर्णय लिया और वो फिल्म पहुंची। और मुझे खुशी है कि कटियार काजत घुसली ने पैसे कितने कमाए वो अलग बात है, लेकिन मेरे लिए खुशी की बात ये है कि उसने दादा और पोते को इकट्ठा लाया, दादा और पोते का गाना एक बन गया।
दादा पोते का गाना एक बन गया। एक और बात आपने कही कि वो लोग हमारे जैसे लोग जो वेस्टर्न म्यूज़िक को अपना मान लेते हैं, और मेलबर्न में हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो उतना करीब नहीं है शायद भारतीय संगीत के, तो यहाँ जब मराठी महोत्सव होता है, फिल्मों का महोत्सव होता है, तो उसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या एक शुरुआत अच्छी है कि यहाँ पर रहने वाले मूल निवासी लोग अपने संगीत को, जो उनके माता पिता दादा दादी का संगीत हुआ करता था, उसे जाने, फिल्म बनाने की विधा को जाने, या नृत्य नाट्य की जो शैली है उसे जाने?
देखिए, एक बात तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ जय, कि मैं ये मराठी फिल्म है, ये तमिल फिल्म है, ये बंगाली फिल्म है, ये आसमिस फिल्म है, मैं रीजनल फिल्में मानता नहीं हूँ। इसकी एक कारण ये है कि अगर हिंदी को आप भारतीय फिल्म बोलते हो तो मराठी फिल्म भी भारतीय फिल्म है। मराठी कोई अलग प्रांत है क्या? या महाराष्ट्र भारत से बाहर है? महाराष्ट्र भी भारत का हिस्सा है, तमिलनाडु भी भारत का हिस्सा है, कर्नाटका भी भारत का हिस्सा है, तो कन्नड़ फिल्म भी भारतीय फिल्म ही कहनी चाहिए, या बंगाली फिल्म भी भारतीय फिल्म कहनी चाहिए। उसको क्यों बंगाली बोलते हो?
यानी भारतीय फिल्म जो कन्नड़ भाषा में है या मराठी भाषा में है?
करेक्ट। तो एक भारतीय फिल्म है कि जो मराठी भाषा में बनी है, और ये जो कटियार का असद घुसली है एक्चुअली ये इंडियन फिल्म है, क्योंकि ये उर्दू में भी है और मराठी में भी है। तो पूरे फिल्म में ये दो लैंग्वेज में फिल्म बोलती है, एक उर्दू भी बोलती है और मराठी भी बोलती है, क्योंकि उसका जो एक मेन किरदार है खान साहब, वो पूरी फिल्म में उर्दू बोलता है, वो एक भी शब्द मराठी में नहीं बोलता। तो असल किरदार में ये भारतीय फिल्म है। तो सॉरी, मैंने आपको
फिल्म महोत्सव की बात कर रहा हूँ। मेलबर्न शहर में जब इस तरह के फिल्म महोत्सव होते हैं तो किस तरह से जुड़ाव होते हैं, कितने सिग्निफिकेंस है इनकी?
देखिए, किसी भी, बेसिकली फिल्म की कोई भाषा नहीं होती है। अगर हम लोग वेस्ट, जब अपने देश को छोड़ के बाहर जाते हैं तो किसी भी फिल्म की भाषा नहीं होती है। फिल्म की लैंग्वेज होती है, जिसको आप भाषा के साथ अगर जोड़ने लगे तो फिर फिल्म फ्लॉप है, या तो फिल्म अच्छी तरह से पहुंची नहीं है लोगों तक। अगर हम लोग आज भी इंग्लिश फिल्म देखते हैं तो हम लोग जब स्कूल में पढ़ा करते, तो मैं तो मराठी मीडियम में पढ़ा हूँ, लेकिन हम लोग तो स्कूल में जब इंग्लिश फिल्में देखने जाते थे तो हमें तो एक भी वर्ड समझ में नहीं आता था, क्योंकि हम लोग तो मराठी मीडियम में पढ़ चुके हैं, लेकिन वो फिल्म हम तक पहुँचती थी। मैंने एक फिल्म देखी थी आर्या करके, जो कि एक तेलुगु फिल्म थी, तो मुझे एक भी लफ्ज तेलुगु का समझ में नहीं आया, फिर भी विदाउट सब टाइटल मैं कह सकता हूँ कि ये सीन में इसने क्या बोला होगा, क्योंकि फाइनली उनकी इमोशन जो है वो मुझ तक पहुंचती है, और वो इमोशन जो है वो किसी हर एक इंसान की जो इमोशन है वो ग्लोबली एक ही होती है, चाहे वो अलग भाषा में बोले। मैं, अगर मुझे चोट लगी तो मैं आई करके बुलाऊंगा, आप माँ करके बोलोगे, कोई मदर करके बुलाएगा, तो भाषा अलग हो तो इमोशन तो एक ही है। तो मैं समझता हूँ कि अगर मेलबर्न में भी ये मेरी भारतीय मराठी पिक्चर अगर रिलीज होगी, उसका फेस्टिवल होगा, तो इसमें जो फिल्में हैं वो अलग अलग जॉनर की फिल्में हैं। एक म्यूजिकल फिल्म है, एक सोशल रिलेवेंट वाली फिल्म है, एक अपने बहुत बड़े पैट्रियट जो थे बाल गंगाधर तिलक, तो उनके ऊपर एक मैंने फिल्म की थी जिसमें मैंने उनका किरदार निभाया था, तो वो एक फिल्म है। एक फिल्म है जिसका हम लोग वर्ल्ड प्रीमियर कर रहे हैं, जो यहाँ पे पहली बार हो रही है,
उसके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। सविता दामोदर परांजपे, कहानी क्या है? पहली बार इसे देखने जा रहे हैं, यहाँ मेलबर्न में ही वर्ल्ड प्रीमियर कर रहे हैं आप, तो क्या है इसके पीछे, कुछ बताएंगे हमारे सुनने वालों को?
एक तो सबसे मैं उसकी महत्वपूर्ण बात ये कहूँगा कि हमारे सबके जो चहेता एक्टर है जॉन इब्राहिम, तो जॉन की ये पहली मराठी फिल्म है जो उसने प्रोड्यूस की है, और ये अगेन मराठी में नाटक का बहुत बड़ा स्थान है, तो ये फिल्म जो है ये भी एक मराठी नाटक के ऊपर आधारित है जो कि रीमा लागू ने किया था बहुत साल पहले, उसका नाम भी यही था, सविता दामोदर परांजपे पे। तो हॉरर फिल्म है, सस्पेंस फिल्म है, और इससे ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं क्योंकि ये तो प्रीमियर है और 11-10 तारीख को शाम को लिडो सिनेमा में सबके लिए ये शो ओपन है।
जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछता हूँ, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स से बात करते हुए मैं ये पूछने में थोड़ा सा घबराता हूँ क्योंकि उनके आसपास बड़े बॉडीगार्ड रहते हैं। ये बताइए कि जो बॉलीवुड के और भारत के जो फिल्म स्टार होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, वो चश्मा पहन के इंटरव्यू क्यों देते हैं?
क्योंकि रात भर जगने के बाद उनकी आंखें सूजी हुई होती है। कुछ लोग मतलब लाल आंखें लेके कैमरा को सामने नहीं जाना, लेकिन मेरी लाल आंखें नहीं है। मैं भी रात भर नहीं सोया क्योंकि मैं कल ही मुंबई से आया हूं और अभी मेरा जेटलैग शुरू है, तो जब यहाँ पे 3 बजते हैं तो इंडिया के 10 बजते हैं, तो मुझे नींद ही नहीं आती है। तो
थैंक यू सुबोध, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए, और उम्मीद करते हैं ये फिल्म बहुत अच्छा करेगी।
प्लीज़ आप भी देखिए और सबको बताइए।